attachment,
asakti,
poverty,
garibi,
and unnecessary labor.
और अनावश्यक मेहनत का कारण है.
The original cause of all these is the desire for unnecessary prestige and money.
इन सब का आदि कारण यह है कि सम्मान और धन की इच्छा.
ओम ज्ञान तमिरंदर संज्ञानांज. Because the verse which we read today, just now, is so clearly depicts the problems that arise from the desire for prestige and money.
आज जो श्लोक हमने पढ़ा वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किस तरह से समस्याएं आते हैं यदि व्यक्ति में इच्छा है सम्मान और धन की.
It is said in Srimad Bhagavatam that our life in the material world is something like a dream.
ऐसे बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कि भौतिक जगत में हमारा जीवन एक स्वप्न के समान है.
The contaminated consciousness is compared to a dream state.
हमारी दूषित चेतना है उसकी तुलना एक स्वप्न से की जाती है.
And Krishna consciousness is awakened state.
और कृष्ण भावना यह जागृत स्थिति है.
We can see practically 99% of the world's population is in a contaminated state of consciousness.
हम आसानी से देख सकते हैं कि दुनिया के लगभग 99% लोग दूषित चेतना में हैं.
What is contaminated consciousness?
दूषित चेतना क्या है?
That is very easy to understand.
यह बहुत आसान है समझने के लिए.
Just like when you see a very fragrant, beautiful looking rose, if you want to pluck it and smell it for your own sense gratification, it is contaminated consciousness.
यदि कोई बहुत ही सुंदर अच्छे सुगंध का पुष्प है यदि हम उसको खुद के इंद्रियों के लिए सुनना चाहते हैं तो वह दूषित चेतना है.
But if you see the beauty of the rose flower, pluck it and offer it to Krishna, it is pure consciousness.
पर यदि आप उस गुलाब का सुंदर को देखते हो उसको निकालते हो भगवान कृष्ण को अर्पण करते हो तो वह शुद्ध चेतना है.
So everyone in this world is trying to take the role of an enjoyer, proprietor, and friend of living beings.
इस दुनिया में हम लोग सबके मित्र, अधिष्ठाता और भोक्ता यह भूमिका है खुद पे लेने का प्रयास कर रहे हैं.
So one should first of all be convinced that I am not the enjoyer, proprietor, or controller, or friend of any living being. Krishna is so.
सबसे पहले हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि मैं अधिष्ठाता या किसी का मित्र या नियंत्रण करता नहीं. वास्तव में कृष्णा यह सब है.
When one understands this and acts in accordance to this understanding, then that is called as vairagya.
जब व्यक्ति यह समझता है और इस समझ के अनुसार कार्य करता है तो उसे वैराग्य कहा जाता है.
Generally speaking, people have hardly any understanding about the soul.
साधारणतः लोगों को आत्मा के वर्कुल के बारे में बिल्कुल समझ नहीं होती है.
A beautiful example is given in Srimad Bhagavatam.
एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है श्रीमद् भागवतम में.
Just like a deer who is very thirsty, he runs around here and there in the desert in search of water, but he doesn't know the forest which he left and came to the desert. In the same forest below the grass there is water available.
इस तरह से एक मृग होता है, हिरण होता है, वह जंगल को छोड़कर रेगिस्तान में आ जाता है और रेगिस्तान में इधर उधर पानी के लिए ढूंढते हुए भटकता है और उसे पता नहीं है कि जो जंगल छोड़कर आया है उसी जंगल में घास के नीचे पानी है.
So he is only able to superficially see the grass, but he is unable to see the water that is below the grass.
वो केवल बाहरी तौर पर केवल घास को देख सकता है पर घास के नीचे जो पानी है उसको देख नहीं पाता है.
So the grass which is grown superficially on the water is compared to this body.
तो जो घास है जो कि पानी के ऊपर उगा है उसकी तुलना इस शरीर से की गई है.
And the water is compared to the actual spirit.
और जो पानी है उसकी तुलना की गई है आत्मा से.
So the point conveyed here is that the deer is actually looking for happiness which is in water. Similarly, our actual happiness lies in the spirit.
So यहाँ पे ये बताया जाना जा रहा है कि जो मृग है, हिरण है, वह पानी ढूंढ रहा है. उसी तरह से हम भी आनंद ढूंढ रहे हैं, पर वास्तविक आनंद जो है वो आत्मा में है, जिस तरह से वास्तविक पानी जमीन में, जंगल में.
Just as the grass has sprouted from the water, in the same way this material body has sprouted upon the soul.
जिस तरह से घास जो है वो पानी के ऊपर उगा है, उसी तरह से ये भौतिक शरीर आत्मा के ऊपर प्रकट हुआ है।
But seeing the superficial body, we are identifying with it and running here and there to acquire this and that to get happiness.
पर ये शरीर से हम खुद को पहचान कर लेते हैं और इसलिए इधर उधर भागते हैं अनेक चीज प्राप्त करने के लिए और उससे सुखी होने के लिए।
If only one can understand the Atma Tattva, that I am not the body, I am the soul. My original connection is with God. At once one can experience happiness.
यदि बस व्यक्ति इतना समझ ले आत्म तत्व को कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ और मेरा आदि संबंध भगवान के साथ है तो तुरंत वह आनंद का अनुभव कर सकता है.
Why not everyone understand this knowledge and become happy?
तो सब लोग इस ज्ञान को समझकर सुखी क्यों नहीं बनते?
It is not possible because everyone is trapped with the three modes.
यह संभव नहीं है क्योंकि सब लोग तीन गुणों के अधीन फंसे हुए हैं.
In tamoguna or in the mode of ignorance, one thinks the knowledge means satisfaction of bodily senses.
Tamoguna mein vyakti sochta hai ki gyan ka matlab hai sharirik indriyon ka samadhan.
And for him, money is God.
Aur uske liye paisa yahi bhagwan hai.
So his entire life goes in acquiring money and satisfying the senses.
इसलिए उसका संपूर्ण जीवन पैसा प्राप्त करने में और इंद्रियों की तृप्ति करने में चला जाता है.
And this he considers to be happiness.
और इसी को वह सुख मानता है.
And in mode of passion, one considers mental speculation and mundane logic to be actual knowledge.
और रजोगुण में व्यक्ति मनोवृत्त कल्पना और तर्क वितर्क इनको ज्ञान समझता है.
Only when one becomes situated in mode of goodness can one appreciate the presence of spirit soul in this body.
जब व्यक्ति सत्वगुण में स्थित रहता है तभी वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को समझ सकता है.
And he can understand that the spirit soul is actually pure and it is beyond the body and it has a connection with God.
और तभी वह समझ सकता है कि आत्मा जो शरीर में स्थित है वह शुद्ध है और वो आध्यात्मिक है, उसका भगवान के साथ संबंध है.
So actually our thinking power should be utilized in trying to understand about this soul and its relation with God.
इसीलिए हमारे विचार करने की जो शक्ति है उसका उपयोग इस आत्मा को समझने के लिए और आत्मा का भगवान के साथ संबंध समझने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
But misuse of thinking power is to always keep pondering over how to earn more and more money.
और विचार करने की शक्ति का धर्म उपयोग यह है कि हमेशा यह चिंतन करते रहना कि कैसे मैं और पैसा कमा सकता हूँ.
Everyone in this world is looking for love.
इस दुनिया में हर एक व्यक्ति प्रेम की खोज में है.
But can money bring about love and happiness?
पर क्या पैसा प्रेम और आनंद ला सकती है?
You can see all around you, there are so many people rendering services to so many masters.
अब आपके चारों ओर देख सकते हो कि अनेक लोग हैं जो अनेक स्वामियों की सेवा कर रहे हैं.
There are servants and there are masters. So the master takes service from the servant and pays him money.
सेवक होता है और मालिक होता है, तो मालिक सेवक से सेवा लेता है और उसको पैसा देता है.
So without money, why should the servant serve the master in this world?
यदि पैसा नहीं मिल रहा है तो सेवक ने सेवक भला मालिक की सेवा क्यों करे?
So the motivation is money.
तो इसलिए काम करने की प्रोत्साहन मिलता है पैसे से.
And there is no love in between the master and the servant in this world.
और स्वामी और सेवक में कोई प्रेम नहीं होता है बहुत अच्छी बात.
So the whole world, being in a mode of ignorance, is simply centering its life around money and prestige.
इसीलिए संपूर्ण जगत जो तमोगुण में होने के कारण उसका सारा जो अस्तित्व है वो पैसे और इंद्रियों में ही केंद्रित है.
Because of lack of knowledge of the soul, people think somehow or other we will achieve happiness by accumulating wealth.
आत्मा के बारे में ज्ञान न होने के कारण लोग सोचते हैं कि पैसा अर्जित करके हम किसी न किसी तरह से सुख प्राप्त करेंगे.
But we can see one who neglects one's real identity, namely the soul, and tries to put himself in the wild chase for money making, then we will see that he becomes more and more greedy.
हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति आत्म तत्व की ओर ध्यान नहीं देता है और पैसे के पीछे जंगली जानवर की तरह लग जाता है तो वह और अधिक अधिक लोभी बनते जाता है.
And there is no end to that rat race.
और ऐसे प्रतिस्पर्धा के लिए कोई अंत नहीं है.
How much money is required for such a person to become satisfied?
ऐसे व्यक्ति को समाधान होने के लिए कितने पैसे की जरूरत है?
Not 1,000, not 10,000, not 1,00,000, or not even 1 crore.
एक हजार नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, और 1 crore भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है.
Because when one becomes greedy, there is no question of satisfaction for such a person.
क्योंकि जब व्यक्ति लालची बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए समाधान का सवाल ही नहीं होता.
We see from the pastime of Lord Vamanadev, when he was talking to King Bali. King Bali was telling him, I can give you islands and I can give you anything you want. Why are you asking for 3 pieces of land?
हम रामदेव की लीला में देखते हैं कि बलि महाराज रामदेव को बोल रहे थे कि मैं आपको द्वीप दे सकता हूँ, जो भी मांगना चाहो मैं आपको दे सकता हूँ, और फिर आप 3 कदम जमीन क्या मांग रहे हो?
And Vamanadev said, I am a Brahmana. A Brahmana never accepts any charity beyond what he needs.
तो रामदेव ने जवाब दिया, मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण कभी जरूरत से ज्यादा दान स्वीकार नहीं करता है.
If he accepts beyond what he needs, then he will become greedy and by that he will destroy himself.
यदि वो जरूरत से ज्यादा दान स्वीकार करता है तो उसे लालची बन जाएगा और फिर खुद का नाश कर देगा.
At that time, Vamanadev said, for a greedy man, even if you give the whole world, still he will not be satisfied.
तब वामनदेव ने बताया कि लालची व्यक्ति को यदि आप पूरा विश्व भी दे दे, फिर भी वो समाधान नहीं होगा.
But a man who is controlled in his mind and senses, he can just be satisfied with whatever he needs.
और जो व्यक्ति मन और इंद्रियों नियंत्रित है, उसे जितनी जरूरत है उतना प्राप्त करके ही वो समाधानी रह सकता है.
And it's true, it can be practically understood.
और ये सत्य है, इसे हम व्यावहारिक तौर पर समझ सकते हैं.
Often a story of a man named Midas is said.
हमें कई बार एक मिदास नाम के व्यक्ति की कहानी बताई जाती है.
He was given a golden bank. He was given a bank by which a stick. He was given a stick by which he could convert things into gold.
उसे एक ऐसे जादू की छड़ी दी गई थी जिससे कि वो चीजों को सोने में परिवर्तित कर सकता था.
And he became so overjoyed by this boon that he would touch everything in his house and turn it all into gold.
यह वरदान प्राप्त करके वो इतना आनंदित हो गया कि उस घर में जो भी चीज थी सबको स्पर्श करता था और उसे सोने में परिवर्तित करता था.
And he laughed loudly, seeing everything getting turned into gold. In that laughter, he gradually became mad. And he proudly shouted to himself, just see how I am converting everything into gold. And when his daughter came into the room bringing some eatables for him, he turned towards her and touched her head and turned her into also a golden statue.
और जब उसकी बेटी वहां पर आई उसके लिए कुछ खाने के लिए व्यंजन लेकर, तो उसने उसे भी उसके सिर पर वो छड़ी स्पर्श की और वह भी एक सोने की मूर्ति बन गई.
Later on he came back to his senses and cried.
और फिर वह होश में आ गया और फिर वो रोने लग गया.
In this way, when one becomes greedy, there is no end to his satisfaction.
इस तरह से जब व्यक्ति लालची बन जाता है तो उसके समाधान के लिए कोई अंत ही नहीं है.
Similarly, it is said, just at one time a man got the benediction from Lakshmiji. She was giving a lot of gold coins to him. But she had given him a bag and she told him, whatever could be contained in the bag, only just take it.
तो एक बार एक व्यक्ति को लक्ष्मी जी द्वारा वरदान मिला, वह उसे सोने की मुद्राएं दे रही थी. उसने उसे बताया, उसको एक थैली दी, उसे बताया कि इस थैली में जितना आएगा उतना आप दे सकते हो.
And she told him, if one coin falls outside the bag, everything will vanish.
लक्ष्मी ने उसे बताया कि इसमें से एक भी सिक्का यदि नीचे गिर जाए तो सब कुछ अदृश्य हो जाएगा.
And this person said, no, keep putting more, put more.
और ये व्यक्ति बोल रहा था, और डालो, और डालो.
And she went on putting, and he was shaking the bag so that all the coins will go inside.
और वो डाल रही थी, डाल रही थी, और थैली को प्यार था ताकि सारे सिक्के अंदर चले जाए.
Until it became like a mountain.
और अंत में वह एक पर्वत के समान बन गया.
Still he was greedy to accumulate little more in his hands.
और फिर वो लालची था कि थोड़ा और मेरे हाथों में पकड़ लूं.
At last the bag exploded and both Lakshmi ji along with the gold coins vanished.
और अंत में वो जो थैली है वो फट कर उसको विस्फोट हो गया और लक्ष्मी देवी और वो स्वर्ण मुद्रा सब कुछ गायब हो गया.
In this way we can see A man who is greedy for accumulating wealth, there is no end to his greed.
इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पैसा प्राप्त करने के लिए लालची है, उसके लालच के लिए कोई अंत ही नहीं है।
You can see around you in this world how people are working hard to accumulate wealth.
आपके जीवन में ही आप चारों ओर देख सकते हैं कि कैसे लोग कई मेहनत कर रहे हैं धन संचित करने के लिए।
Some people get insomnia because of although people have seen with their eyes that the money is taken away at the time of death, still people don't mind working harder and harder for earning money.
यदि लोगों ने यद्यपि लोगों ने देखा है अपने आंखों से कि सारी संपत्ति मृत्यु के समय समय छीन ली जाती है, फिर भी लोगों को कुछ बुरा नहीं लगता है बहुत मेहनत करने के लिए पैसा कमाने में.
Because money is sweeter than honey, according to them.
क्योंकि उनके लिए पैसा ये मधु से भी अधिक स्वादिष्ट है.
Don't think it is a very simple, ordinary example.
ऐसा मत समझिए कि बहुत ही साधारण उदाहरण है.
This statement is made by Prahlad that foolish people think money is sweeter than honey.
यह प्रहलाद महाराज का विधान है कि पैसा जो है वो शहद से भी अधिक स्वादिष्ट है.
Why he gives the example of honey? Because if you see a foolish bumblebee, he collects so much honey in his honeycomb throughout his life. At one point of time, a man comes there with a burning stick in his hand and drives away all the bumblebees and takes all the honey that is accumulated and goes away.
यहाँ पे शहद का उदाहरण क्यों दिया गया है? क्योंकि एक मूर्ख मधुमक्खी बहुत सारा शहद संचित करती है, पर अंत में एक व्यक्ति आता है जलती हुई मशाल लेकर और सभी मधुमक्खियों को वहाँ से भगा देता है और सारा शहद लेकर चला जाता है.
In the same way, our money is taken away by force at the time of death.
ठीक उसी तरह से जबरदस्ती से हमारा सारा पैसा मृत्यु के समय हमसे छीन लिया जाता है.
No matter how much you cry,
आप कितना भी रो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है.
No matter how much security you had put for the money,
आपने उस पैसे की कितनी भी सुरक्षा की हो, फिर भी.
Also, Prahlad says money is compared to honey because when one drinks honey, he becomes mad after drinking more and more.
और पैसे का तुलना शहद से की जाती है क्योंकि जब व्यक्ति शहद पीता है तो पागल हो जाता है और अधिक शहद पीने के लिए.
And one becomes ready to take any amount of risk for getting such money.
और व्यक्ति कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाता है ऐसा पैसा प्राप्त करने के लिए.
Sometimes you see a thief jumping into a compound wall into a rich man's house at the risk of being shot dead by some watchman or somebody, or being bitten by watchdogs.
अभी हम देखते हैं कि चोर जो होता है वह किसी अमीर व्यक्ति के घर की दीवार के ऊपर कूदकर अंदर प्रवेश करने का प्रयास करता है. यद्यपि इसमें यह खतरा है शायद चौकीदार उसे गोली मार देगा या वहाँ पे जो कुत्ता है वह उसे काटेगा.
Because he knows money is sweeter than honey for him.
Okay, उसके लिए जो पैसा है वह शहद से अधिक स्वादिष्ट है.
Similarly, a soldier joins the army knowing well that he may have to die in the battlefield.
ठीक उसी तरह से सैनिक होता है वह सैन्य में भर्ती होता है यद्यपि उसे मालूम है कि शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है.
Or the merchant, he travels across the oceans to go to foreign countries to sell his goods and make money.
यहाँ पे कोई बिजनेसमैन होता है वह समंदर के पार जाता है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जहाज में.
Although sometimes the ship may drown and he may die.
यद्यपि कभी कभी उस जहाज जो होती है डूब सकती है और उसकी मृत्यु हो सकती
है. Or sometimes he may dive deep into the ocean waters to get some pearls, although there is a risk of dying there.
और कभी कभी वह सागर में घोल पर कूद जाता है क्योंकि वह कोई रत्न प्राप्त करना चाहता है यद्यपि उसमें मृत्यु होने की खतरा है.
People are only mad after accumulating wealth, but they don't know how much risk is involved in possessing such wealth.
लोग सिर्फ पागल हैं अधिक-अधिक पैसा प्राप्त करने के लिए, पर उन्हें पता नहीं है कि ऐसा पैसा संचित करने में कितना खतरा है.
One time, Gandhi made a statement, "When will that day come in India when a woman can wear all kinds of ornaments and jewels in her body and walk in the middle of the street in the midnight?"
एक बार गांधी जी ने विधान किया कि कब वो दिन आएगा जब एक स्त्री अनेक प्रकार के आभूषण अपने शरीर में पहनेगी और खुलम खुला रास्ते पर चलेगी मध्य रात्रि को.
आई डोंट थिंक दैट डे विल एनी डे कम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड.
मुझे लगता है कि इस भौतिक जगत में कभी भी ऐसा दिन आ सकता है.
Because although people used to wear so many ornaments in the ancient times, today people know women are afraid of wearing gold earrings or nose rings or necklaces because their ears are a threat.
क्योंकि लोगों को ये पता है कि जो स्त्रियां हैं वो सोने के आभूषण कान में नाक में या गले में पहनने से डरती है क्योंकि उनको पता है कि ऐसा पहनने से उनका कान जो है
हार मैंने पसंद पुल्स देयर नेकलेस दे मे इवन डाय.
कभी गले में का हार कोई खींच लेगा तो शायद उनकी मृत्यु भी हो सकती है.
इन दिस वे इफ यू पोसेस लॉट ऑफ वेल्थ एंड इफ द वेल्थ इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फैसिलिटीज देन वन इज रनिंग अ ग्रेट रिस्क.
इस तरह से व्यक्ति बहुत सारा धन संचित करता है तो बहुत बड़ा खतरा मोल लेता है.
नॉट ओनली दैट एज सून एज समबडी नोज दैट यू आर वेरी रिच नेचुरली पीपल बिकम एनवियस ऑफ यू.
इतना ही नहीं जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आप बहुत धनवान हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं.
Then they will try to swindle your wealth by fair or foul means.
और फिर आपका धन वो आपसे छीन लेने का प्रयास करेंगे सही या गलत मार्ग से.
Sometimes you find, like I heard, some hospitals when they find rich men coming there, they take out their kidneys and sell it abroad for 1.5 lakhs.
जैसे कि मैंने सुना कि कुछ ऐसे अस्पताल हैं जब उनमें कोई अमीर लोग अमीर मर्ज से मरे जाते हैं तो वो उनके किडनी निकाल देते हैं और प्रदेश में 1 लाख रुपए के लिए उसका बेच देते हैं.
और इफ यू गो फॉर सम माइनर ऑपरेशन लाइक रिमूवल ऑफ अ टीथ और सम माइनर ऑपरेशन इन द हार्ट दे मे एक्चुअली कॉम्प्लिकेट द डिजीज बाय गिविंग मेडिसिन दैट विल अग्रेवेट द सिचुएशन.
या फिर आप किसी अस्पताल में कोई छोटा सा ऑपरेशन करने के लिए जैसे कि कोई दांत निकालना है ऐसे कुछ छोटे से ऑपरेशन करने आते हो तो वो आपको ऐसी दवाई देंगे जिससे आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी.
हां बाय दैट इंसटेड ऑफ टेकिंग 5000 फ्रॉम यू दे मे टेक 5 लाख फ्रॉम यू.
और इस तरह से आपसे 5000 लेने की जरूरत है वो आपसे 5 लाख ले लेंगे.
एंड इफ पीपल फाइंड दैट अ मैन इज वेरी रिच समटाइम्स दे हाईजैक द चिल्ड्रन ऑफ सच रिच मैन एंड दे ब्लैकमेल डिमांडिंग सम मनी.
और यदि लोगों को पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है तो फिर उसके बच्चों को अपहरण कर लेते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं उसे बहुत सारा पैसा मांगते हैं.
इन दिस वे पीपल हु आर वेल्दी आर नॉट पीसफुल.
इस तरह से जो लोग अमीर है उनकी जीवन में शांतता नहीं है.
इट इज सेड इन भागवतम दे आर कॉन्स्टेंटली अफ्राइड.
भागवतम ऐसे बताया कि वे हमेशा भयभीत रहते हैं.
अबाउट सो मेनी थिंग्स
अनेक अनेक चीजों के बारे में.
दे आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स बिकॉज ऑफ होम दे मे लूज मनी. And they are afraid of Svajanaka Dasyu. That means rogues and thieves who are actually coming in the disguise of relatives.
वे जानवरों के पंछियों से डरते हैं जो उनका धन ले लेंगे. यहाँ पे वे अपने वे ऐसे चोरों से डरते हैं जो उनके रिश्तेदारों के देश में आते हैं.
Because sometimes relatives appear to be very friendly only to swindle all your money from you.
क्योंकि कभी कभी रिश्तेदार बहुत ही मैत्री का भाव दिखाते हैं पर उनका उद्देश्य केवल आपका धन छीन लेना होता है.
Are they afraid of their own family members that if they know that now I am earning more money then they will increase the list of demands.
फिर वे अपने कुटुंब के सदस्य से ही डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यदि मैं उनको पता चल जाएगा कि मैं भी अधिक पैसा कमा रहा हूँ तो उनकी मांगों की पर्ची और बढ़ जाएगी.
Are they afraid of persons who come for charity?
जो लोग दान मांगने के आते हैं ऐसे लोगों से वो डरते हैं.
Are they afraid of the time factor which will come and take away all the wealth?
या फिर वो काल से डरते हैं जो उनकी सारी संपत्ति को छीन लेगा.
Are they afraid of themselves?
या वो खुद से ही डरते हैं.
Why? Because sometimes while sleeping a rich man having a big bunch of keys near his hands is very afraid whether he locked the door properly or not.
किसी कभी कभी अमीर व्यक्ति जो होता है वो सोता है तो उसके पास में वो एक बड़ी चाबियां का गुच्छा रखता है तो उसे पता रहता है कि मेरी तिजोरी में इनको ताला लगा है.
Sometimes people carry a big bunch of keys in their hips. Although they may have 10 or 20 keys, still they are not happy because while sleeping he gets a doubt. I forgot to lock my godrej bureau.
कभी कभी लोगों की कमर में वो 10-20 चाबियां लगा कर रखते हैं फिर भी उनकी शांति नहीं होती है क्योंकि उन्हें डर रात को सोते समय मेरा लगा होता है कि मैंने एक जोरी को ताला लगाया है नहीं.
Then he checks the bureau, then he checks the window, then he checks the door. Then when he is very confident, then he goes to sleep.
फिर वो तिजोरी में उसके उस जांच पड़ताल करता है, खिड़की के दरवाजे की जांच पड़ताल करता है. जब वो देखता है कि सब कुछ सुरक्षित है, तब वो सो सकता है.
Still he may be fearful that a thief may break open the door and come and kill me.
और फिर भी उसे डर लगा रहता है कि शायद कोई चोर दरवाजा तोड़कर अंदर आएगा और मुझे मार डालेगा.
And it is no surprise in the modern times that somebody who is very wealthy sometimes is murdered.
और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आधुनिक समाज में कोई व्यक्ति बहुत अमीर है तो उसकी हत्या कर दी जाती है.
Why should we accumulate wealth hoping that we'll get satisfaction ultimately to be murdered by someone?
तो इस तरह से धन अर्जित करने के लिए तुष्णा क्या उपयोग है जिससे अंत में केवल व्यक्ति की हत्या हो जाती है.
Most often we see in this world that one has to adopt some illegal means to earn money if one has to satisfy the people around him.
Amja adhiktar par bhi dekhte hain ki yadi vyakti ko uske aajubaju mein jo log hain unko samadhan bhi karna hai to use anaitik marg apnane padte hain dhan sanchit karne ke liye.
Sometimes he works very hard to satisfy family members and relatives around him, but he sees that no matter how much he earns even by illegal means they are not at all satisfied.
कभी कभी वो बहुत मेहनत करता है अपने सभी संबंधियों को समाधान करने के लिए, और वह देखता है कि भले वो कितना ही पैसा अर्जित करे और अनैतिक मार्गों से भी अर्जित करे, फिर भी वो समाधान नहीं होते.
It is said a man whose satisfaction actually comes from materialistic way of life, especially satisfying the tongue and genitals. So living a life like an animal, such a person is called as a grihamedi.
इसे बताया जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में आनंद भौतिक भौतिक भौतिकता से आता है, अपनी जिह्वा अपनी जड़ इंद्रियों की तुष्टि करने से, तो ऐसे व्यक्ति को ग्रहमेदी बताया गया है.
And he forgets his soul and engages in hard work for earning more and more money.
वो अपने आत्मा को भूल जाता है और कड़ी मेहनत में लग जाता है अधिक अधिक पैसा कमाने के लिए.
For such a person it is said, गृहेषु कूट धर्मेषु दुःख तंत्रेषु स्वतंत्रितः कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृहे. इट इज सच अ पर्सन गृहेषु कूट धर्मेषु, ही इज कॉट अप इन अ फैमिली व्हिच इज फुल ऑफ डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स.
तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वह व्यक्ति ऐसे परिवार में अटक जाता है जहां सारे राजनीति और कूटनीति चलती है.
And there is so much local fight going on that he is not able to satisfy all the parties.
और अंदर अंदर में इतने सारे झगड़े चलते रहते हैं कि सब पक्षों को समाधान नहीं कर सकता.
Because he has no spiritual understanding, the family people don't see him as a spiritual figure or a spiritual leader at home.
और क्योंकि उसकी कोई आध्यात्मिक समझ नहीं है, इसीलिए उसके परिवार के लोग भी उसे एक आध्यात्मिक नेता के समान नहीं देख तरह से नहीं देखते.
They treat him exactly like a bull that extracts oil.
उसको ठीक उसी तरह से उसके साथ बर्ताव करते हैं जिस तरह से एक बैल के साथ किया जाता है जो तेल निकालता है.
And the pivot around which the bull circumambulates, that is sex life.
और ये जो बैल है जो केंद्र बिंदु की ओर घूमता है वह है मैथुन जीवन.
Such a person lifelong works harder and harder without any understanding of soul or God and dies wasting his valuable human form of life.
जीवन भर कड़ी मेहनत करता है अपना अधिक अधिक पैसा कमाने के लिए और अंत में बहुत ही दुखी मृत्यु मरता है और वह अपना बहुमूल्य मानव जीवन खो देता है.
No matter how much he works hard, he cannot enjoy more than what he could have enjoyed if he didn't adopt the illegal means.
कितनी भी मेहनत करे वह अधिक भोग नहीं कर सकता जितना वो पहले कर सकता था बिना अनैतिक मार्गों को अपनाए हुए.
फॉर एग्जाम्पल बाय हैविंग अ मेजर अमाउंट ऑफ मनी वन विल ईट फाइव चपातीस अ डे.
उदाहरण के तौर पर यदि व्यक्ति के पास थोड़ा ही पैसा है तो वो पांच चपाती खाएगा.
इवन इफ बाय इलीगल मींस इफ ही अर्न्स लॉट्स ऑफ मनी ही इज गोइंग टू ईट द सेम अमाउंट.
यदि वो अनैतिक मार्गों से बहुत सारा पैसा कमाएगा फिर भी वो उतना ही अन्न खाएगा.
एंड वी सी सच अ पर्सन वर्क्स ऑल डे मॉर्निंग टू नाइट and sometimes he is just forced to eat the remnants that is left by his family members.
Param dekhte hain kabhi koi aisa vyakti subah se raat tak kadi mehnat karta hai aur ant mein उसके परिवार वाले जो उच्चिष्ट रखते हैं, जो बचा हुआ अंत रखते हैं, वो उसको खाना पड़ता है।
But he falsely thinks, I am the master of the house.
पर वो भ्रम में सोचता है कि मैं इस घर का स्वामी।
But actually he is serving Maya.
पर वास्तव में वो माया की सेवा कर रहा है।
And the same principle is applicable even to the national leaders who think, I am the father of the nation or I am the master of the nation. Even if they work very hard to make the situation of the country better, lifelong they may work hard, but at one point of time they may be killed by the same people for whom they worked very hard.
बहुत जीवन भर मेहनत करते हैं देश के परिस्थिति को अच्छा करने के लिए, पर अंत में एक समय ऐसा आएगा कि वही देशवासी जिनके लिए अपने सारा जीवन मेहनत किया वही उनकी हत्या कर देंगे।
This goes to show clearly that no matter how much you work very hard in this world for the benefit of family or society, you can never satisfy anyone without God.
इससे हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक जीवन में आप कितनी भी मेहनत करो अपने परिवार वालों को या समाज को संतुष्ट करने के लिए, यदि भगवान को आप नहीं लाते अपने जीवन में, तो आप उनको समाधान नहीं कर सकते।
Although a man may adopt some illegal ways by which he earns money, ultimately the sinful reactions they go along with him and take him to the darkest hell.
यदि भी कोई व्यक्ति कोई गैर कानूनी मार्ग अपना सकता है पैसा कमाने के लिए, पर अंत में उसकी जो पाप की प्रतिक्रिया है
Actually, he may say, I'm not earning for myself, but for my family members. But still, he has to take the reaction along with him when he dies. Sometimes people have a wrong notion. They say, this person was adopting all the sinful means to earn this money, but he has left the money behind. So the reactions are also left here.
कभी कभी लोगों की ये गलत धारणा होती है कि इस व्यक्ति ने अनेक गैर कानूनी मार्ग अपनाया है पैसा कमाने के लिए, पर अभी वो पैसा पीछे छोड़ गया है, इसीलिए सारे पाप की प्रतिक्रिया है वो भी पीछे रह गई है।
But that is a wrong understanding.
यह गलत समझ है।
Because just if a thief is robbing off a bank and is running and the police catch him and he says now I'll hand over the money, is he freed from punishment? He is going to be surely punished.
उसे जरूर सजा दी जाएगी।
But money is also taken away and he is also given punishment.
उसका पैसा भी छीन लिया जाता है और उसे सजा भी दी जाती है।
In the same way, a man leaves behind all the money that he accumulated throughout the life for the benefit of his family members and relatives, but he dies alone with no money in hand. He dies alone and goes to the darkest region of hell.
उसी तरह से वो व्यक्ति सारा पैसा उसने अर्जित किया है वो पीछे छोड़ जाता है अपने परिवार के सदस्यों के लिए और अकेला मृत्यु का सामना करता है बिना किसी पैसे के और अंत में नरक में चला जाता है सारे पाप की प्रतिक्रियाओं को भोगने के लिए।
In this way, we can understand, as Lord Krishna says in Bhagavad Gita. आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः इहंते काम भोगार्थम् अन्यायेन अर्थसंचयन्। He says अन्यायेन अर्थसंचयन्। अन्याय means not by proper means. अन्यायेन अर्थसंचयन्। People earn money by illegal means for what? इहंते काम भोगार्थम्, for satisfying their lusty propensities.
इस तरह से भगवान बताया गया है कि लोग गैर कानूनी मार्गों से पैसा कमाते हैं, क्यों? अपनी जो काम वासना है उसको संतुष्ट करने के।
हरि सेस आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध परायण, दे आर नॉट नारायण परायण बट काम क्रोध परायण।
ये लोग होते हैं वह भगवान नारायण से आसक्त नहीं होते हैं पर काम क्रोध इनसे आसक्त होते हैं।
दिस कैन नेवर बी सैटिस्फाइड।
काम क्रोध कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते।
एंड लॉर्ड कृष्णा सेस मेनी सिम्टम्स दैट मैनिफेस्ट इन अ पर्सन when he wants to accumulate money without reference to God.
और भगवान कृष्ण अनेक ऐसे लक्षण बताते हैं जो एक व्यक्ति में प्रकट हो जाते हैं जब वह भगवान से संपर्क रखे बिना पैसा अर्जित करने का प्रयास करता है।
As Krishna says, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम। They climb on the chariot of their mind and run here and there in the plan making business of earning more and more money.
वे अपने मन के रथ पर सवार हो जाते हैं और इधर उधर भागते हैं और योजना बनाते हैं कि और पैसा कैसे कमाया जाए।
इदमस्ति इदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम्। नाउ आई हैव दिस मच मनी एंड टुमारो आई विल हैव सो मच मनी। इन दिस वे आई विल मेक मोर एंड मोर एंड मोर मनी एंड आई विल बिकम अ वेरी वेल्दी मैन।
आज मेरे पास इतना पैसा है, कल इतना हो जाएगा, इस तरह से मैं और पैसा कमाऊंगा और एक दिन मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा।
एंड इन दिस वे द ग्रीड गोज ऑन इंक्रीजिंग।
और इस तरह से उनका लालच बढ़ते जाता है।
लाइक एन इनसैटिएबल फायर।
किसे बिना बुझने वाले अग्नि के समान।
And when this greed grows, it begets many, many unwanted qualities.
और जब इस तरह से लालसा बढ़ती है, तो फिर वह अनेक प्रकार के दुर्गुणों को जन्म देती है।
It creates enmity.
और शत्रुत्व को पैदा करती है।
Such a person thinks, "Asau khatamaya shatruhu, hanishye chaparanapi." He thinks that that person is trying to compete me in my business. I will kill him.
ऐसा व्यक्ति सोचता है कि वो व्यक्ति मेरे साथ मेरे धंधे में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा।
He came after me in the business. How can he flourish better than me?
वह मेरे बाद में आया धंधे में और मुझसे ज़्यादा पैसे कमा सकता है।
I have to pull him down.
मुझे उसे नीचे खींचना पड़ेगा।
So in this way, his enmity develops in the heart, and it is burning his heart.
इस तरह से उसके हृदय में शत्रुत्व की भावना प्रकट होती है और उसके हृदय को जला देती है।
You can see how Duryodhana, even after dismissing all the Pandavas, sending them to forest, he could not be peaceful.
देखते हैं किस तरह से दुर्योधन सब पांडवों को वनवास में भेजकर भी संतुष्ट नहीं हो पाया।
Because the Pandavas, although they were only five, they had the company of Lord Krishna.
क्योंकि पांडव इतने भी केवल पांच थे और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे।
And Krishna always guided them.
भगवान कृष्ण ने हमेशा उनका मार्गदर्शन किया।
By his blessings, they won the hand of Draupadi.
उनके आशीर्वाद से उनको द्रौपदी प्राप्त हुई।
And Draupadi being the daughter of Drupada, she was having such an immense wealth that Drupada gave a part of the Panchala kingdom to the Pandavas.
क्योंकि द्रौपदी द्रुपद राज्य की द्रुपद राजा की पुत्री थी, तो उसके पास बहुत संपत्ति थी। द्रुपद राजा ने उसका खुद के पांचाल राज्य का एक हिस्सा पांडवों को दे दिया।
And they became so affluent that Duryodhana became afraid seeing their affluence.
और इतने समृद्ध हो गए क्योंकि समृद्धि देखकर दुर्योधन भयभीत हो गया।
And he thought if the Pandavas grow like this, at one point of time they will come and destroy me and take over Hastinapur.
वो सोचने लगा कि पांडव इस तरह से समृद्धि करते रहे, तो फिर एक समय वे मुझ पर आकर हमला करेंगे, मुझे हरा देंगे और हस्तिनापुर को छीन देंगे।
I had to pacify my enemy by giving some gifts.
मुझे मेरे शत्रु को शांत करना पड़ेगा कुछ भेंट देकर।
Actually, one pacifies enemy by various means.
वास्तव में शत्रु को शांत किया जा सकता है अनेक अनेक मार्गों से।
By mutual talk, or agreement, or by giving some gifts, or by danda, by giving them some punishment. But actually, Duryodhana was not capable of punishing the Pandavas. Rather, he was afraid himself. So he better preferred to give some gifts to them and keep them at peace.
परस्पर संवाद के द्वारा या कुछ भेंट देकर या फिर सजा देकर शत्रु को शांत किया जा सकता है। पर दुर्योधन में ये शक्ति नहीं थी कि वो पांडवों को सजा दे सके। इसीलिए उसने सोचा कि बेहतर यह है कि मैं उनको कुछ भेंट दूं और कुछ शांत करूं।
So he told his father, "Give a small portion of our kingdom to the Pandavas and keep them quiet."
उसने अपने पिता से कहा कि हमारे राज्य का छोटा सा हिस्सा हम पांडवों को देते हैं और इस तरह से उनको शांत कर लेते हैं।
And Dhritarashtra, being the father of Duryodhana, he had a similar mentality.
Dhritarashtra, Duryodhana के पिता थे,
उनकी मानसिकता वैसी। रीजन दैट वॉज फिल्ड विद थिक फॉरेस्ट कॉल्ड एज कांडव प्रस्थ।
उन्होंने ऐसी जगह प्रदान की जो घने जंगल से भरी हुई थी, उसका नाम कांडव प्रस्थ था।
एंड द पांडवास हेडेड बाय युधिष्ठिर, दे वेरी ग्रेसफुली एक्सेप्टेड विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट।
पांडव जिनके महाराज युधिष्ठिर प्रमुख थे, उन्होंने बड़ी ही नम्रता से इसको स्वीकार किया बिना किसी शिकायत की।
But by Krishna's mercy, Indra poured amrita into the forest, and besides that, they burnt the forest completely. And in this way, they created a beautiful city in the same place of Kandavaprastha, and it was named as Indraprastha.
भगवान श्री कृष्ण से की कृपा से इंद्र ने वहाँ पे अमृत की वर्षा की और उन्होंने उस संपूर्ण जंगल को जला दिया और वहीं पर उन्होंने बहुत ही समृद्ध शहर बनाया। इसका नाम हुआ इंद्रप्रस्थ।
The entire city became filled with beautiful wide roads covered with so many tall bushy trees, with so many cows and calves everywhere, and very learned brahmanas, tribal kshatriyas, well-to-do vaishyas and faithful shudras.
Sampurna rajya jo tha woh bhar gaya sundar bade raston se, inko aachchadit kiya gaya tha achhe bade vrikshon se, aur us rajya mein bahut hi सुसंस्कृत ब्राह्मण और वीर क्षत्रिय और समृद्ध वैश्य और श्रद्धालु शूद्र थे।
Adding to the beauty of the city, one दानव called as माया दानव, he created a beautiful mansion called as माया सभा।
और इस शहर की सौंदर्य को और बढ़ाते हुए एक दानव माया दानव जिसका नाम था, उसने एक सुंदर सभा की सृष्टि की।
And taking the advice of superiors, Yudhishthira arranged for a Rajasu Yajna to be celebrated there. When Duryodhan and other Kauravas, they visited the palace, they were completely stunned seeing the beauty of the palace.
उस महल में आए तो वो उस महल के सौंदर्य को देखकर धक्के बक्के रह गए।
There were hundreds and thousands of
आसमान की ऊंचाई का था।
And in the middle of the palace there were beautiful ponds which were filled with blue color, golden color and red color roses, lotuses.
और उस महल के बीच में सुंदर सरोवर थे जो भरे हुए थे
and there were golden colored turtles which were coming up and going out, going down in the waters. There were ivory benches and golden benches by the side of these lakes. The entire Maya Sabha was filled with so many wonderful artistic furniture.
और संपूर्ण माया सभा बहुत ही सुंदर शैलीदार फर्नीचर से भरी हुई थी।
And Duryodhana walked over there. Sometimes he fell into a water, thinking that it is ordinary floor. Sometimes he mistook water to be ordinary floor. In this way, he got bewildered seeing the intricate design of Maya Sabha.
और जब Duryodhana इस महल में चल रहा था, तो कभी वो पानी को जमीन समझ बैठा, और जमीन को कभी पानी से समझ बैठा और गिर गया। और इस तरह से उस सभा के बहुत ही सुंदर शैलीदार सृष्टि के कारण हम मोहित हो गए।
During the Rajasu Yajna, he was given the service of receiving all the gifts for Yudhishthira.
Rajasu Yajna में उसको सेवा दी गई, महाराज युधिष्ठिर को जो सब भेंट मिल रहे थे, उन सबको स्वीकार कर लिया।
And he observed that there were thousands and thousands of cows and horses and chariots and so many armors that were donated to this temple.
और उसने देखा कि हजारों हजारों गाय, घोड़े, रथ और शस्त्र महाराज युधिष्ठिर को प्रदान किए जा रहे
हैं। And hundreds and thousands of brahmanas with conch shells were blowing when Yudhishthir was offered the abhishek.
और हजारों हजारों ब्राह्मण शंख बजा रहे थे जब महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक हो रहा था।
So much charity came to Yudhishthir that some of them had to be returned back.
महाराज युधिष्ठिर के पास इतना दान आया कि उसमें से कुछ कुछ उनको लौटा देना पड़ा।
On their way back, when Duryodhana was returning back to his kingdom, he called for his uncle Shakuni and told him, "I feel like entering fire."
और जब लौट कर जा रहा था दुर्योधन, तो उसने अपने चाचा शकुनी को बुलाया, उससे कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अग्नि में प्रवेश करूं।
Or consume poison.
जहर खा लूं।
Or commit suicide.
या आत्महत्या कर लूं।
Who is the man in this world who can tolerate to see his enemies prosper? His heart was raging with envy. And Shakuni told him, "Why are you just stretching your mind like this? I will do the needful." I will get all these things for you.
मैं ये सब चीजें आपके लिए ला कर दूंगा।
Then when they went to Dhritarashtra, Dhritarashtra tried to pacify him, my dear son, you have everything, you have so many servant maids, so many servants, such a huge palace, and so many soldiers who are all completely surrendered to you. What more do you want?
तुम्हारे पास इतने दासियां है, दास है, इतना आलिशान महल है, इतने सारे सेवक है, तो तुम्हें किस चीज की कमी है?
Although Duryodhana had everything, he was not happy to see his enemies prospering.
यद्यपि दुर्योधन के पास सब कुछ था, फिर भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि वो देख रहा था कि उसके शत्रु की समृद्धि हो रही है.
This is the nature of material greed when one is not God conscious.
और यह भौतिक लालच का स्वभाव है.
And it burns your heart. And one loses all mental peace. The Duryodhana's mentality can be easily seen in the people of today. It is no surprise. Only instead of wearing crown and having a sword in their hands, they are wearing pants, shirt, shoes and going to companies. That's all.
फर्क सिर्फ इतना है कि वे मुकुट और मुकुट आदि नहीं पहनते हैं, पर शर्ट पैंट जूते पहनते हैं, कंपनियों में जाते
हैं. Also, money makes one think I am God.
और जो पैसा है वो व्यक्ति को ऐसे सोचने को लगाता है कि मैं भगवान
हूँ. And one unnecessarily becomes proud.
और व्यक्ति बिना किसी जरूरत के गर्वित बन जाता है.
Ravana had a golden kingdom.
रावण के पास एक सोने राज्य था.
It is said every house in Sri Lanka was made of pure gold. It is said Ravana had an underground path to gold mines from where he could dig out enormous amount of gold and make his entire kingdom out of pure gold.
जहाँ से वो प्रचंड मात्रा में सोना लाता था और सारे राज्य को उसने सोने से बनाया था.
Although his entire kingdom was made of gold, he was not satisfied and happy. Rather, he had become unnecessarily proud to take away the Lord's eternal consort, Mother Sita.
और यद्यपि उसका सारा राज्य सोने से बना था, फिर भी वह संतुष्ट और सुखी नहीं था, बल्कि वह जरूरत के बिना ही बहुत गर्वित बन गया. और इसीलिए उसने भगवान की भगवान राम की सीता देवी है उसको छीनने का प्रयास.
Ultimately was destroyed.
उसका नाश हो गया.
Similarly, the sons of Kubera, Nalakur and Manigrip, because their father is in charge of the treasury of all the demigods, they became proud. And in such intoxication of pride, they were actually nude playing in the waters with women.
ठीक उसी तरह से नलकुर और मणिग्रीव जो कि उनके पिता कुबेर ये देवी देवताओं के खजाने के खजानजी है, उसके कारण वे धन से नशे में उन्मादित हो गए थे और वे नग्न होकर स्त्रियों के अप्सराओं का खेल रहे थे.
Ultimately, they had to be cursed to become trees.
और अंत में उनको शाप मिला जिससे कि उन्हें पेड़ बनना पड़ा.
In this way, we have so many examples in the Shastras.
इस तरह से शास्त्र में अनेक उदाहरण.
That's why this verse says, those in human society who are intelligent should give up the original cause of lamentation, illusion, fear, anger, attachment, poverty and unnecessary labor. The original cause of all this is the desire for unnecessary prestige and money.
जो कि समाज में अधिक सम्मान और धन प्राप्त करना है, इसका त्याग कर देना चाहिए.
Even after hearing so much, still people's attraction for money is not lost.
और इतना सुनने के बाद भी लोगों का पैसे का जो आकर्षण है वह नहीं घटता.
Otherwise, why should they see कौन बनेगा करोड़पति?
तो फिर उनको कौन बनेगा करोड़पति ये देखने क्या जरूरत
है? I heard that the streets are all empty when the serial goes on the TV.
मैंने तो सुना है कि सारे रास्ते सूने बन जाते हैं जब खाली पड़ जाते हैं जब ये सीरियल चलती है.
Watching this serial in TV is like a honeybee licking the honey bottle from outside.
यह सीरियल को टीवी पर देखना ठीक एक मधुमक्खी का मधु की जो बोतल है उसको बाहर से चक्के के समान है.
So they are not going to give you 1 crore rupees from inside the TV. But still people are caught up in a hopeless hope. Although they know we cannot get it, let us at least see what's going on. Like the fox who was looking at the grapes. This is only because of the craze for money that people have in their minds now. This is actually mode of ignorance or mode of passion. Because of that, people have become blind to the real identity. If only we knew that we are not the body, what would we be doing? That is all by Chanakya Pandita. He says, Sannimitte varam tyago, vinashe niyate sati. He says, Sat nimitte varam tyago. One should spend all one's accumulated wealth for the sake of Sat, the eternal.
बताते हैं कि उन व्यक्ति ने जितने भी धन अर्जित किया है उस सबका व्यक्ति उसे त्याग करना चाहिए जो शाश्वत है उसके लिए.
As he also says, Taja Durjana Samsargam, Bhaja Sadhu Samagamam. He says, give up the association of bad people.
बताते हैं कि जो दुष्संग है बुरे लोगों का संघ है उसका त्याग करो.
Bhaja Sadhu Samagamam. And come in the assembly of devotees and glorify God.
और भक्तों के संघ में आओ भगवान का गुणगान करो.
Kuru Punyam Ahoratram and day and night work for Krishna consciousness. Because every service that you do, your bank account keeps on growing bigger and bigger in Krishna's account. Although we cannot see with our blind eyes, every day when you chant Hare Krishna, your bank balance is increasing. And Krishna is the protector of the bank balance. So it never is vanquished. That is real wealth. And he says, Smaranityam Anityatam. Always remember the temporary nature of this material world. If you remember these four things, then you will understand how to succeed in your life. Unfortunately, people do not know what is real wealth. God is the original millionaire. Because you may call somebody as lakhpati, somebody as karodpati, somebody as arabpati, somebody as karabpati, but Lord is Lakshmipati. He is the possessor of Lakshmi, he has everything with him. And he is ready to offer you anything. You should be intelligent to ask what will benefit you the most. Like a king declared to his citizens that I want to give a lot of charity today. Today I am very happy because I have got a new son. Hundreds of people came to the king and requested him to give varieties of charity. Somebody asked for some money, somebody asked for cows, somebody asked for a house, they asked for different things. But there was one very intelligent man who was living in the next village.
जो पड़ोस के गांव में रहता था.
He came to the king and told the king, "My dear king, I have only one request to you. My request is, every year I request you to visit my house at least once." And the king was surprised at this humble request, because everyone was demanding so many things from him, but here was a person who wanted to serve the king once in a year. So when the king agreed, the following year when he had to go to his village, he found that the two villages are not properly connected by a road. So he laid a very beautiful road. And he planted trees on either side. And when he reached the man's house, it was so small, cottage. So he ordered his minister to build a huge bungalow there. And the Mahal became filled with so many cows and servants and silk beds and so many things exactly as the king had. So in this way this man became king's relative. And king thought, if I am going to go to his house, he has to be equal to me, otherwise people, how will they respect? So he gave him such a position, opulent position, without even asking the king. In the same way, Krishna's devotees enjoy best of both the worlds. We offer Raja Bhoga to Krishna, and afterwards Krishna gives us his remnants and we also get Raja Bhoga. And Krishna is supremely pure, so the entire temple atmosphere is pure, and Krishna also gives us shelter in such a pure atmosphere. And Krishna travels in a chariot as Jagannath Balaram Subhadra, and his devotees also, they also travel in the chariot. You have seen performing aarti for the Lord. And in this way we can see, when one becomes a servant of a king, he gets the same respect as the king. So the process is so easy. A dog who surrenders to a master, he gets to sit in the same cushioned seat of the master. He gets costly biscuits to eat. And he goes with him in the car. He leads a much happier life than the people living in the slum. What is he expected to do? He has to just agree to put a license around his neck. Kantamala. And his master may tell him, go and get the newspaper. And he has to just run back to the gate, pick up the newspaper and bring it to him. And he simply obeys his master. And master treats him so nicely. Whereas there is a street dog outside the house who says, I don't want to surrender to that master. I am the master of my street. He doesn't wear any license. So So what happens to him? He gets beaten up by people with stones. And the municipality van comes, which is Maya, which comes with the, what do you call that, they have a particular kind of weapon to catch the dogs which don't have license. So they catch this dog and take him for killing. In the same way, Krishna's devotees, Deva Kantamala, indicating that they follow all the principles that are given by Krishna in the scriptures. And whatever remnants Lord leaves, devotees accept that. And they simply depend on their master. But those people who don't want to surrender to Krishna, they become victimized by Maya. So Krishna is a millionaire. In fact, he is the ultimate millionaire who is the possessor of all riches. He is served by thousands and thousands of Lakshmis or Gopis in the spiritual world. Lakshmi Sahasra Shatasambrahma Sevyamanam, it is said. He is served like that. And we are Krishna's children. So a millionaire's child, is he not a millionaire? Only he will become a millionaire if he accepts that Krishna is my father. If one does not accept Krishna as my father, then he has to run around in the entire world, here and there, for making money, or look at the TV for Kaun Banega Karodpati to become a Karodpati. And even if he earns a lot of money, he is going to face all the problems that we discussed today. Is it not exactly like the suffering street dog? So let us faithfully become Krishna's dog. Then we actually become millionaires. Because you have the ultimate satisfaction in life. It is said, dharmasya hi apavargasya nartho tayopakalpate. It is said, dharma should not be used for making money, but for apavarga, for finding out the ultimate solution to this material existence and returning to the kingdom of God. And Krishna's feet is such a holy abode that it can completely satisfy all the desires of every living being. Like somebody may have 100 rupee demand, somebody may have 1,000 rupee demand, somebody may have 1 lakh rupee demand, and you may have say a 1 crore rupee demand. But if a rich man comes and gives you, take this 50 crores, then all these demands become a subset of that 50 crores. In this way, one who becomes a devotee of Lord Krishna, he becomes an actual millionaire. He is exactly like the man who invited the king and resided in his house. So instead of going and begging Krishna, give me this, give me that, we should beg Krishna, please come and reside in my heart. Because Krishna, anybody who comes to him with a demand, he immediately reciprocates. So he has agreed to come, so he has to come inside our heart. But he finds that our heart is full of lust, pride, envy, anger, illusion and greed, and such garbage filled up. So he cleanses all those things in our heart and then comes to reside. That is why it is said that Lord Hari resides in the heart of a pure devotee. Tamara Hridaya Sada Govinda Vishram. In your heart, my dear pure devotee, in your heart Lord Govinda is residing always, peacefully. This is the best prayer. Please, my Lord, come and reside in my heart. And this prayer can be prayed by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. So if you chant this Maha Mantra regularly, Krishna will automatically bring contentment to our heart. And we will work hard to earn money only for our sustenance. And for using in Krishna service. Not for simply accumulating more and more and more in vain to ultimately die in disappointment. So Krishna, it said in Bhagavatam, labho jiveta yavata. One should earn only as much as is required for one's sustenance and not more. It's like putting an exact amount of pinch of salt in the food. If it is more, then the food becomes horrible to eat. Thank you very much. Hare Krishna. New Delhi temple. So he has come here to see the meeting here and to stay here for about 1 or 2 weeks so that he can also participate in all the youth programs. So we have been having many devotees all over India coming here to Pune to see all of you advancing so nicely in Krishna consciousness. So I have called for the devotee, if you all can spare two minutes of yours, he's coming just now. That is His Grace Sachidananda Prabhu. So let us all welcome him to Pune with the love of Hari Bol.
Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol!
So Sachidananda Prabhu lives at New Delhi Temple. It's a very beautiful temple at Delhi, at Greater Kailash. If any of you belong to Delhi or nearby place, you all can visit him there. He's available. He's the Assistant Director of ISKCON Youth Forum. And along with Mohan Rupa Prabhu, who is the Director of IYF for Delhi. So they both are working together very hard for preaching Krishna consciousness there. So he has come to Pune for about 10 days, right? 10 days. And he is attending all the various programs here. And he has come to see the preaching at Pune. So he is also available, so all of you can meet him after Prasad. Right. So please all of you join Prasad. Some people get insomnia because of earning money by questionable means. Otherwise they lose sleep because they are hankering for more and more. Otherwise their mind is making plans which money to put in which shares and how to multiply money. But such foolish people do not know. Either we leave the money or money leaves us.